समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
दोस्तों, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो जब तुम तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। नमस्कार दोस्तों, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में बज गए शाम के 4:30, यानी वक्त है चलने का परिक्रमा पर। जी हाँ दोस्तों, और आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, और उसके बाद चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल की गतिविधियों पर भी रहती है हमारी नजर, तो चलेंगे आप और हम खेल के मैदान में भी, और फिर उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को करेंगे याद हम मिलकर जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संक में मैं हूं मुनीष शर्मा, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
हेलो मुनीष, हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मुनीष, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। Prime Minister Narendra Modi says trade deal between India and US reflects the government's consistent and measured approach to global trade negotiations.
कई केंद्रीय मंत्रियों ने भारत अमेरिका समझौते को दोनों ही पक्षों के लिए लाभकारी सौदा बताया है। उद्योग जगत के संगठनों ने कहा है इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
8 opposition MPs of the Lok Sabha suspended from remaining part of the budget session for their unruly behavior in the House. Lok Sabha adjourned for the day. Union Minister Ashwini Vaishnav announces successful breakthrough of the second mountain of Mumbai-Ahmedabad bullet train in Maharashtra's Palghar.
सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीयों का डेटा साझा करने पर मेटा जैसी तकनीकी कंपनियों को दे दी है चेतावनी।
एंड इन द वुमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट, गुजरात जायंट्स टू टेक ऑन दिल्ली कैपिटल्स इन द एलिमिनेटर क्लैश इन वडोदरा दिस इवनिंग। Yes, and Munish, I'm sure you must have witnessed dump sites in a city, which sadly is an increasingly common sight. And I'm sure you'd agree with me if I'd say that besides being an eyesore, they pose a great deal of health risk, disease, and of course, contaminating and polluting the atmosphere. And also, despite the authorities doing their best, the garbage dump sites still do exist, and it is a great cause of concern. So in today's Dateline, we will talk about this problem under the Swachh Bharat Mission. Yes, our topic today, Lakshya Zero Dump Site, India's drive to eliminate cities' dump sites under Swachh Bharat Mission.
Definitely, yes, Abhishek. Whenever we, enter any big city, any mega city, so the first, eyesore is a big dump site. Right.
Yes, and like we were saying, clean surroundings are not just pleasant to look at, they are the foundation of a healthy life. Cleanliness protects us from diseases and helps build a safe and beautiful society.
Definitely, it's high time to eradicate these eyesores, the dump sites, क्योंकि सफाई हमसे शुरू होती है अभिषेक, हमारे घरों, हमारी सड़कों, हमारे स्कूलों और हमारी सार्वजनिक जगहों से, और ये जिम्मेदार नागरिकों से शुरू होती है। जब हम कचरा कूड़ेदान में फेंकते हैं, गंदगी फैलाने से बचाते हैं और अपने आसपास को हम साफ रखते हैं, तो हम एक स्वस्थ माहौल बनाने में योगदान देते हैं, और साफ सुथरी जगहें इन्फेक्शन फैलने से रोकती हैं और हमारी जिंदगी को बनाती हैं कुछ और बेहतर.
Absolutely, Munish, and public participation plays a vital role here. And when people come together, whether in cleanliness drives, awareness campaigns, or daily habits, the impact becomes powerful and long-lasting. And each small step matters. Segregating waste, reducing plastic use, and spreading awareness can bring a big change. Cleanliness is a shared responsibility, not an occasional activity. And today we bring you an inspiring update from India's mission for a cleaner and healthier future. The country is moving steadily towards a bold goal, zero dump sites.
और अभिषेक, अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में भारत में साफ सफाई में लगातार सुधार तो हुआ है. स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू की गई पहलों ने शहरों में साफ सफाई और कचरा मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत किया है, जिससे शहरों को साफ बनाने की नींव रखी गई है. और इसी नींव पर अभिषेक आगे बढ़ते हुए पुराने कचरे के ढेरों को हटाने पर गौर किया जा रहा है. ये कई सालों में जमा हुए कचरे के बड़े बड़े से पहाड़ हैं और इनको हटाना भारत के शहरी साफ सफाई के प्रयासों का बिल्कुल अगला चरण है.
Yes, and in keeping with this, to accelerate this work, the Government of India launched a Dump Site Remediation Accelerator Program, or DRAP, in November 2025 with the objective of achieving Lakshya, zero dump sites, by October this year, with most dump sites targeted for clearance within this time frame. And a dump site, Munish, refers to a land used by urban local bodies for the disposal of municipal solid waste, and often this waste is accumulated over decades through अनसाइंटिफिक डिस्पोजल.
दरअसल होता क्या है अभिषेक, कि जब भी कचरे को खुले डंप साइट में फेंका जाता है तो ये भूजल और मिट्टी को दूषित करता है, हवा की क्वालिटी खराब करता है, और मीथेन, जो तुम जानते हो कि एक बहुत ही खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है, वो निकलती है और आसपास के माहौल पर उससे काफी खराब असर पड़ता है. और ऐसी डंप साइट से आग लगने का भी खतरा बना रहता है. दोस्तों, बीमारी फैलाने वाले कीड़े मकौड़े तो आते ही हैं, और जहरीला धुआं फैलता है जिससे आसपास रहने वाले लोगों को लंबे समय तक सेहत से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं.
Yes, sir. Now here, Munish, let me cite some statistics for our listeners. Approximately 2,479 dump sites have been identified across the country, primarily those containing legacy waste of 1,000 tons or more. And these sites together contain an estimated 25 crore metric tons of accumulated waste. Now, the scale of legacy waste is compounded by rising urban waste generation. Cities currently produce nearly 1,62,000 tons of municipal solid waste each day. And total waste generation is projected to increase to 165 million tons by 2030 and 436 million tons by 2050. So, very staggering statistics there, Munish. And in the absence of timely remediation and scientific processing, greenhouse gas emissions from the municipal solid waste sector could rise to 41.09 million tons of carbon dioxide equivalent by 2030. So here arises the need to eliminate these dump sites and move towards cleaner, sustainable environment.
जी हाँ अभिषेक, दरअसल देखिए कि अभी देश भर में 1,428 जो डंप साइट्स हैं उन पर सुधार का काम चल रहा है, और 62% से ज्यादा जो है वो पुराना कचरा वो प्रोसेस किया जा चुका है. डंप साइट रेमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत 214 डंप साइट्स को हाई इम्पैक्ट साइट्स के तौर पर पहचाना गया है, क्योंकि इनमें भारत के बचे हुए पुराने कचरे का लगभग 80% है. ये साइट्स जो हैं ये 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं, जिनमें 200 शहरी स्थानीय निकाय भी शामिल हैं, और इनमें 8.6 करोड़ मीट्रिक टन कचरा जमा है, और इसीलिए इन्हें तेजी से सुधार के लिए प्राथमिकता दी जा रही है. पुराने डंप साइट से निपटने के लिए दोहरी रणनीति भी अपनाई गई है, जिसमें पुरानी ऐसी साइट्स को हटाना और कचरा प्रोसेसिंग सुविधाएं स्थापित करके नई डंप साइट्स को बनने से रोकना भी शामिल है.
यस मुनीश, लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट लास्ट ईयर. And in 2025, 459 dump sites across 438 cities in 26 states achieved complete remediation. And this adds a cumulative total of 1,138 dump sites fully remediated across 1,048 cities in 29 states. And along the remediation of existing dump sites, the government will ensure that no new dump sites are created. Alongside remediation, the program emphasizes preventing the creation of new dump sites through scientific processing of all fresh waste, land reclaimed from remediation would be prioritized for solid waste management infrastructure or developing green cover as a preference.
But the big question remains, Abhishek, like what after treatment? Mm-hmm. Treatment ke baad ye kachra aakhir jata kahan hai? दरअसल हम देखें तो पुराने कचरे की बायो माइनिंग की जाती है और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुराने कचरे को वैज्ञानिक तरीके से स्टेबल किया जाता है और उसे अलग अलग इस्तेमाल होने वाले हिस्सों में बांट देते हैं जिससे लैंडफिल पर दबाव कम होता है और ये पक्का होता है कि कुछ भी वापस उस डंप साइट पर न जाए। हर रिकवर किए गए मटेरियल को सही तरीके से दोबारा इस्तेमाल या प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं जो बड़े सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच को फॉलो करता है और जिसका मकसद है कच्चे माल की खपत और कचरा पैदा होने को कम करके संसाधनों का सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना, जिसमें इसे कम करना, दोबारा इस्तेमाल करना, रिसाइकल करना, नया बनाना, रिकवर करना और मरम्मत करना जैसे सिद्धांत शामिल हैं। दोस्तों, बायो माइनिंग का मतलब है डंप साइट से पुराने कचरे को खोदकर निकालना और उसे वैज्ञानिक तरीके से साफ करना, और कचरा निकालने के बाद उसे लंबी कतारों में फैला दिया जाता है और हवा में सांस लेने दिया जाता है, यानी उसे हवा लगने दी जाती है, जबकि खास माइक्रोब्स यानी जो बायोकल्चर नेचुरल डीकम्पोजिशन की प्रक्रिया को ये तेज करते हैं।
Yes, Manish, and let's also talk about what happens once the waste becomes stable and dry. Well, it is screened and separated into different categories such as soil-like fines, bricks, stones, metals, plastic, clothes, and other recyclables. And each of these materials is then sent for proper reuse. And if I may give you an example, like road construction, recycling, co-processing in industries or composting, depending on its type, and biomining converts a mixed garbage hill into usable resources, ensuring that very little is left to go to a landfill.
तो दोस्तों, निष्कर्ष तय हम ये कह सकते हैं कि 2026 तक जीरो डंप साइट्स हासिल करने से रोजाना के म्युनिसिपल कामों में साइंटिफिक कचरा मैनेजमेंट को शामिल करके और कचरा उठाने वालों और सफाई कर्मियों को फॉर्मल कचरा मैनेजमेंट चेन में इंटेग्रेट करके आधुनिक शहरी गवर्नेंस की नींव मजबूत होगी। लंबे समय में डंप साइट्स को हटाने से बेहतर जमीन का उपयोग होगा और कम पर्यावरणीय तनाव और स्वस्थ शहरी जीवन की स्थितियां बनाने में मदद मिलेगी। ज्यादा साफ, ज्यादा संसाधन कुशल और बेहतर मैनेज शहरों को सक्षम बनाकर मिशन जीरो डंप साइट्स विकसित भारत 2047 के एक बड़े विजन में योगदान करता है, जहां शहरी विकास, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और जीवन की लंबी अवधि की गुणवत्ता के साथ ये जुड़ा हुआ है।
Yes, and to round up our discussion on this very vexing and pressing problem, Munish, cleanliness is not just a duty, it is a shared responsibility. Every small action, from proper waste disposal to spreading awareness, helps build healthier cities for future generations. Let's be partners in this mission. Together, let's turn waste into wealth and dump sites into green spaces. And let us pledge today to be active participants in keeping our surroundings clean, because when citizens take responsibility, cleanliness becomes a way of life.
Swachh Bharat ka irada kar liya humne desh se apne vaada, ye vaada kar liya humne Swachh Bharat ka irada kar liya humne desh se apne vaada, ye vaada kar liya humne
Swachh Bharat.
दोस्तों, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है खास हमारे लिए उनके पास।
Yes, and Prime Minister Narendra Modi today invited citizens to watch the special Pariksha Pe Charcha episode on the 6th of this month. And in a social media post, Prime Minister said it is refreshing to interact with India's youth. He emphasized on the importance of stress-free exams and shared practical insights on overcoming challenges, maintaining balance and nurturing confidence. And Mr. Modi informed that this year the interactive sessions were held with exam warriors in Devmorga, Coimbatore, Raipur, Guwahati, and at the 7 Lok Kalyan Marg in Delhi. And with the exams, board exams first approaching, I think this is a very relevant topic today, isn't it, Munish?
बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है अभिषेक.
एंड मूविंग ऑन, द अमृत उद्यान लोकेटेड विद द प्रेमिसेस ऑफ राष्ट्रपति भवन इज ओपन टू द पब्लिक फ्रॉम टुडे एंड विल बी ओपन टिल द मार्च 31st. एंड अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, द गार्डन विल बी ओपन फ्रॉम 10 AM टू 6 PM विद द लास्ट एंट्री एट 5:15 PM. एंड द गार्डन विल रिमेन क्लोज ऑन मंडेज फॉर मेंटेनेंस एंड ऑन मार्च 4th ऑन द ओकेजन ऑफ होली.
The entry to the Amrit Udyan will be free for all visitors. The slots for the visit can be booked online at visit.rashtrapatibhavan.gov.in or offline through self-service kiosk located outside gate number 35 of the Rashtrapati Bhavan. For the convenience of the visitors, shuttle bus service from Central Secretariat Metro Station to gate number 35 will be available every 30 minutes between 9:30 AM and 6 PM. Shuttle buses could be identified through the banner Shuttle Service for Amrit Udyan. The visitors are allowed to carry mobile phones, electronic keys, purses, handbags, water bottles, baby milk bottles, and umbrellas inside the Udyan. Except for these items, no other item will be allowed. For Parikrama, with Priya Mondal, Aman Yadav, Akashani News.
दोस्तों आप तो जानते हैं कि वित्तीय वर्ष का बजट जो है वो संसद में पेश किया जा चुका है और इस बजट में महिलाओं के लिए कई खास प्रावधान किए गए हैं. उनके बारे में हम जानेंगे आज. खासतौर पर शी मार्ट की जो घोषणा है उससे महिला उद्यमियों में काफी खुशी देखने को मिल रही है. तो सुनते हैं उस पर ये रिपोर्ट.
महिलाओं के लिए सामुदायिक स्वामित्व वाली खुदरा आउटलेट के रूप में स्व सहायता उद्यम शी मार्ट स्थापित करने की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की है. इस घोषणा से स्वयं सहायता ग्रुप की महिलाओं में संतोष की भावना है. इससे इन समूहों को अपने उत्पाद ब्रांडेड मार्केट में बेचने का अवसर मिलेगा. परभणी जिले की गंगाखेड़ तहसील में कार्यरत महिला समूह की कृषि सखी वंदना भोसले शी मार्ट के संदर्भ में कहती है,
ये जो निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब हम बचत की सदस्य जो उत्पादन करते हैं उसको हम मार्ट में बेच सकते हैं. इससे हमारे वस्तुओं को अलग पहचान मिलेगी. ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे उत्पादन को देखेंगे, उससे हमारी बिक्री बढ़ेगी. इसलिए बहुत अच्छा फैसला है. मैं इसके लिए अर्थमंत्री निर्मला जी की बहुत आभारी हूँ.
इसी जिले के मानवत तहसील में कार्यरत ग्रामीण आजीविका मिशन उम्मीद की समन्वयक भाग्यश्री भिसे ने शिवाट के बारे में अपनी भावनाएं आकाशवाणी के साथ इन शब्दों में साझा की.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन इन्होंने इस बार के बजट में सी मार्क शुरू करने की घोषणा की है. उससे महिलाओं को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मदद होगी, साथ ही उनका समय भी बचेगा, क्योंकि सी मार्ट में वे अपने उत्पाद को बेचने के लिए रख कर अपने काम पर लौट सकती है. उसे अधिक समय मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा, जो उसे अपने व्यवसाय को और बढ़ाने में मदद करेगा.
केंद्र सरकार के ये सी मार्ट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायक सिद्ध होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं. परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित.
And now we turn our attention to the state of Mizoram. And Mizoram is witnessing a rise in tourist arrivals drawn by its natural beauty, peaceful atmosphere and the civic sense of its people. The state's tourism sector is gaining momentum, aided by travel videos shared online by domestic and international visitors. We have a report.
Mizoram's scenic landscape, breathtaking locations and the distinctive lifestyle of the Mizo people are increasingly capturing the attention of visitors. Many tourists have highlighted the strong sense of mutual respect and community among the people, a quality they say is rarely found elsewhere. At the same time, local communities are becoming more adept in hospitality, further enhancing the experience for tourists visiting the state. Although a large number of visitors arrive during the festive season, tourist inflow into the state continues unbated. Speaking to Akashvani News at Solomon Temple, visitors from Delhi Srimati Sri Priya said that they had not experienced such scenic beauty and genuine hospitality elsewhere. They further described Mizoram as a peaceful and safe destination, particularly for women travelers, and recommended it as an ideal holiday location. She says,
I have exactly found that here. People are very friendly, helpful, and there is no element of fear. Like when we visited, everything is normal. Even the prices, if you have to go and buy the goods, they are all properly priced. There's no bargaining, there's no cheating. So it's very clean state and very organized. No traffic snarls. People are very patient. So that aspect of Aizawl, as far as the city of Aizawl is concerned, that I've noticed, and I feel really very happy and proud to be a part of this city.
They emphasize that if Mizoram continues to maintain its clean and healthy environment, along with its culture of mutual respect and commitment of truth, the state has high potential to attract attract a significantly larger number of visitors and emerge as one of India's most visited tourist destinations. A total of 8,29,839 tourists visited the state between January and December 2025. Of this number, 11,484 were foreign nationals, while the remaining visitors were domestic tourists. The department reported a 97% increase in domestic tourist arrival and a 112% surge in foreign tourists compared to 2024. Tourism officials attributed the significant growth partly to improved connectivity following the inauguration of the Bairabi-Sairang railway line by Prime Minister Narendra Modi in September 2025. The impact of the new rail link was evidently in monthly figures, with tourist arrivals rising from 30,507 in September 2024 to 95,885 in September 2025. For Parikrama, this is Isaac from Akashvani Aizawl.
Yes, and we now travel from the northeastern state of Mizoram to the very picturesque Panaji and Goa. And as the sun sets over the Mandovi, a new wave of inspiration is hitting the shores of Panaji. The Goa Book Festival 2026 is officially here, and it is turning the Bhav Saheb Dayanand Bandotkar ground of Panaji into a literary paradise. We have more from a correspondent.
From February 4th to 8th, Panaji transforms into an ocean of stories. To be inaugurated by Chief Minister Dr. Pramod Sawant, this five-day cultural extravaganza features over 200 stalls and 100 publishers. Whether you are looking for Konkani classics or English bestsellers, there is 10% discount waiting for every reader. The Goa Book Festival 2026 will also feature a special exhibition titled Goa Stories of Light and Delight. This exhibition will project the representative works of eminent artists from Goa who have contributed to the making of many classics for children published by National Book Trust India. The exhibition brings out works of Mario de Miranda and Shashi Shetty. Along with this, the fair will also feature special exhibitions celebrating 150 years of Vande Mataram and the life of Sardar Vallabhbhai Patel at 150. Yuvraj Malik, Director, National Book Trust India, told Akashvani that
Goa Book Festival will be organized in a collaborative model from 4th to 8th of February 2026 in Kala Academy. The entry for the entire event will be ticket. There will not be any charges for any activity to participate and attend.
Cultural concerts, most of the but this is something different that we are getting. This is the nation building exercise.
For the little ones, storytelling and clay workshops spark the imagination, while the author's corner hosts heavyweights like M. J. Akbar, Sachin Pilgaonkar and astronomer not Shubhanshu Shukla. Open daily from 11 a.m. to 8 p.m. with free entry, it is more than a fair, it is a celebration of the reading culture. This is Mahesh Sopade for Parikrama from Akashvani Panaji.
दोस्तों कल 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया गया. देश को वेटलैंड संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है. उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित छारी ढंड पक्षी अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट की मान्यता मिल गई है. और ये उपलब्धि गुजरात के लिए तो खास है ही, क्योंकि छारी ढंड इस राज्य की पांचवी और कच्छ जिले की पहली रामसर साइट बन गई है. तो आइए सुनते हैं भुज से हमारे संवाददाता अशरफ नथवाणी की ये रिपोर्ट.
कच्छ जिले का बन्नी क्षेत्र, जो एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान के रूप में प्रसिद्ध है, उसके किनारे पर स्थित छारी ढंड पक्षी अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड साइट यानी रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है. इसके साथ ही छारी ढंड गुजरात की पांचवी और कच्छ जिले की पहली रामसर साइट बन गई है. 2 फरवरी को मनाए गए विश्व वेटलैंड्स दिवस के पहले की गई इस घोषणा से स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों में खुशी छा गई है. केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटना पक्षी अभयारण्य के साथ साथ गुजरात के छारी ढंड को भी रामसर सूची में शामिल किया गया है. इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह मान्यता जैव विविधता के संरक्षण और वेटलैंड्स की सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है. इस बारे में जानकारी देते हुए गुजरात के वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुनभाई मोढवाड़िया ने बताया कि छारी ढंड को रामसर साइट का दर्जा मिलने से पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन, इको टूरिज्म और स्थानीय विकास को नई दिशा मिलेगी. उन्होंने बताया कि गुजरात देश के कुल वेटलैंड क्षेत्रफल का 21% से अधिक हिस्सा रखता है, जो किसी भी अन्य राज्य से सबसे अधिक है.
रामसर साइट का दर्जा मिलने से उसका कंजर्वेशन को बल मिलेगा, साथ ही साथ ये इको टूरिज्म साइट के लिए भी एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन भी बने. गुजरात के लिए ये गौरव की बात है.
कच्ची भाषा में छारी का अर्थ खारा और ढंड का अर्थ उथला जलाशय होता है. लगभग 227 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह वेटलैंड वर्ष 2008 में गुजरात का पहला कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। यहाँ पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है। साइबेरिया, मध्य एशिया और यूरोप से हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, जिनमें कॉमन क्रेन, फ्लेमिंगो और सारस प्रमुख है। इसके अलावा यह क्षेत्र चिंकारा, केराकल, रेगिस्तानी लोमड़ी और भेड़िये जैसे वन्य जीवों का भी महत्वपूर्ण आवास है। परिक्रमा के लिए भूज से अशरफ नथवाणी।
Yes, in some business news, the Sensex zoomed 2,073 points to close at 83,739, while the Nifty climbed 639 points to settle at 25,728. And for more updates about the market activities, tune in to Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
और दोस्तों आइए अब हम याद करते हैं महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करते हैं उन महान व्यक्तित्वों की भी जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन।
We remember freedom fighter Bhavani Prasad, who was martyred on 3rd February 1935. A political activist, Bhavani was born in 1914 at village Joydepur in the district of Dhaka, now in Bangladesh. He got involved in Bengal's revolutionary movement and joined the Sri Sangha revolutionary group in Dhaka.
In 1934, Bhavani Prasad, along with his comrades Ravi Ranjan Banerjee, Manoranjan Banerjee and Ujjwala Majumdar, planned to assassinate the oppressive governor of Bengal, John Anderson, at the Lebong racecourse Darjeeling on the 8th of May 1934. Bhavani approached the governor and fired, but mistakenly shot a British woman. Bhavani was wounded in the exchange of fire with the police. He was caught and sent to jail. The court later sentenced him to death in the case. Bhavani Prasad was hanged on the 3rd of February 1935 in Rajshahi Central Jail.
Yes, and we're also remembering Charles Hardin Holly, who passed away on this day in 1959, known professionally by stage name Buddy Holly. He was an American singer, songwriter and musician who was central and pioneering figure of rock and roll. He was born to a musical family in Lubbock, Texas during the Great Depression and learned to play the guitar and sing alongside his two siblings. Let's listen in to a bit of his hit track, Every Day.
Getting closer, going faster than a roller coaster, love life. Like yours will surely come my way. Hey, 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 every day it's getting faster.
और आज ही पुण्यतिथि है उस्ताद अल्लाह रखा खां की, जो एक सुविख्यात तबला वादक थे, भारत के सर्वश्रेष्ठ एकल और संगीत वादकों में से एक। उन्हें हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं।
Yes, and Felix Mendelssohn was born on this day in 1809. He was a German composer, pianist, organist and conductor of the early Romantic period. Mendelssohn's compositions include symphonies, concertos, piano music, organ music and chamber music. Let's listen in to a hit composition of his.
तो आज है जन्मदिन हिंदी सिने जगत की दो सुप्रसिद्ध अभिनेत्रियों का, वहीदा रहमान और दीप्ति नवल। तो वहीदा जी के बारे में तो क्या कहा जाए, सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने बहुत बड़ी ऐतिहासिक फिल्में हमें दी, जिनमें गाइड, प्यासा, चौदहवीं का चांद, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम, तीसरी कसम आदि विशेष उल्लेखनीय है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के कुछ यादगार गीतों की ये झलक।
और
दोस्तों हमने बताया कि आज ही जन्मदिन है दीप्ति नवल जी का, तो सुनते हैं उनका ये एक और यादगार संवाद या गीत।
आप ही को बता देती हूँ
जी। क्या बता देती आप?
देखिए मैं चमको साबुन की एजेंट हूँ।
नहीं हमको साबुन वाबुन नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत स्टॉक है, लेकिन थैंक यू वेरी मच।
घबराइए नहीं, मैं बेच थोड़ी नहीं हूँ आपको, उल्टा आपको एक सैंपल बॉक्स मुफ्त में दे के जाऊंगी।
ओ थैंक यू।
नहीं लेकिन पहले मुझे डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा।
देखिए इस वक्त मैं इतनी
दीप्ति नवल को और उनके चाहने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, दीजिए इजाजत हमें।
नमस्कार।